السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ سے ہمیں موصول ہوتے ہیں ای میلز کے ذریعے سے اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے، اور بہت سارے سوالات میرے سامنے یہاں پر ہیں موجود۔ ہم سائل کا نام تو نہیں لیں گے، لیکن بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ملتے جلتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے جاوید صاحب کی خدمت میں میں رکھتا ہوں۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے جو سوال آیا ہے، جو متعدد بار پوچھا گیا ہے، یہ کوئی صاحب ہیں جو کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے متعدد لیکچرز میں یہ فرمایا ہے کہ جو مارگیج ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی حرام یا سود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ری مارگیج کا پروسیجر کیا ہے؟ اگر میں ایک ہاؤس اگر میں مارگیج لیتا ہوں، لیکن اس مکان کی مالیت جو ہے وہ فرض کریں ڈبل ہو جاتی ہے، تو میں وہ اضافہ جو منافع ہوا، وہ اضافی منافع لے کر میں علیحدہ ہو سکتا ہوں اور کسی اور کو سپرد کر سکتا ہوں، کیا یہ سود ہوگا؟
دیکھیے، میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ سود کا تعلق قرض سے ہوتا ہے، قرض پر منفعت کو سود کہا جاتا ہے۔
ٹھیک،
اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام نے ممنوع قرار دی ہے، یہ ہمیشہ سے ممنوع رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، تورات میں، دوسری کتابوں میں ایسے ہی اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ قرض پر منفعت، قرض ان چیزوں میں ہوتا ہے جو کنزیومیبل ہیں، اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔
ٹھیک ہے،
جیسے میں نے آپ سے روپیہ لیا، استعمال کروں گا اس کو، میں اس کی وجود کو باقی رکھ کے استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنے وجود کو فنا کر دے گا، مجھے دوبارہ اسے محنت کر کے پیدا کرنا ہوگا، آپ کو واپس کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے،
اسی بنیاد پر اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو مکان آپ نے لیا ہے یا آپ نے گاڑی لی ہے، یہ کوئی قرض کا معاملہ نہیں ہے، یہ در حقیقت بیع و شراء کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ یعنی بینک نے ایک گھر خریدا، ایک گاڑی خریدی، آپ کو اس نے بیچ دی، اب یہ اس نے بیچی ہے آپ کو بعد میں پیمنٹ کے وصول پر۔
ٹھیک ہے،
آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے آپ کو یہ رعایت دی کہ آپ اس کی قسطوں میں ادائیگی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
یہی ہے نا؟
یہی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اب آپ کے ساتھ ایک بیع و شراء کا معاہدہ ہو گیا، تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سود ان چیزوں میں ہوتا ہے جو کنزیوم ہو جاتی ہیں، یہ یوزیبل چیز ہے۔ اور یہ معاملہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ قرض لینے دینے کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ میں نے اس کو مثال سے بھی سمجھایا لوگوں کو کہ میرا ایک مالک مکان ہے، میں کرائے پر رہتا ہوں مثال کے طور پر، وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کرایہ بھی دیتے رہیے اور آج اس کی قیمت طے کر لیجیے مکان کی، اور یہ قیمت بھی بلک ساتھ مجھے دیتے رہیے۔
ٹھیک،
جب یہ رقم پوری ہو جائے گی اس کے بعد یہ مکان بھی آپ کا ہو جائے گا، اس میں کوئی ظلم کا سوال ہی نہیں ہے،
بلکہ
ایک چیز کی خرید و فروخت
احسان
بڑا غیر معمولی معاملہ ہے۔ تو بالکل یہی صورتحال اس وقت بینکاری کے نظام نے پیدا کر دی، ایک سہولت ہے جو لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اس میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ ایسی باتوں کے بارے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ سود ممنوع ہے، حرام ہے، اس کو کوئی حلال نہیں قرار دے سکتا۔ یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں یہ اطلاق کی بحث ہے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جس پر اللہ کے اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس پر اس کا بالکل اطلاق نہیں ہوتا، یہ بالکل جائز ہے۔ اس میں اگر فرض کر لیجیے کہ آپ کو ایک مزید سہولت یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی موقع پر اس مکان کو بیچنا چاہیں، یعنی ایک چیز میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا کہ یہ ہم نے خرید و فروخت کر لی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میری ملکیت ابھی تام نہیں ہوئی، مجھے ابھی وہ رقم ادا کرنی ہے، 5 سال میں کرنی ہے، 10 سال میں کرنی ہے، 20 سال میں کرنی ہے، تو ملکیت کا معاملہ بھی تام نہیں ہوا۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ مالک مکان مجھ سے یہ کہتا ہے، جو اس وقت بینک ہے، کہ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو کوئی زائد پیسے ملتے ہیں تو اچھی بات ہے، یعنی یہ صورتحال جو معاہدے کی ہے یہ دوسرے آدمی کو منتقل ہو جائے گی، وہ زائد آپ لے لیجئے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر معاملہ ہی بالکل جائز ہے، یہ حل اللہ البیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ آپ بیع و شراء کے معاملات کریں، صحیح اصول پر کریں، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ تو جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کی روح سے مارٹگیج اپنی اصل میں بالکل جائز ہے، اگر اس میں یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو یہ مزید احسان ہے، یعنی آپ گھر بیچ سکتے ہیں، اگر اس سے کوئی منفعت حاصل ہوتی ہے تو آپ لے بھی سکتے ہیں۔
ٹھیک، جاوید صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا، جو آپ اکثر یہ بتاتے ہیں یوزیبل اور کنزیومیبل والی جو ٹرمینالوجی آپ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی جو دین فہمی ہے اس سے آپ نے نکالی ہے، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی ہے یوزیبل اور کنزیومیبل والی جو ٹرم؟
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ سود کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سود کیا ہوتا ہے یہ دین نے طے کیا ہے، یہ دنیا نے ہمیشہ سے طے کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی کرایہ جائز ہے، آپ جانتے ہیں نا،
جی جی،
کرایے کے بارے میں کوئی بحث ہے کہ وہ ناجائز ہے؟ آپ مکان کا کرایہ پر دیتے ہیں، آپ ہوٹل کرایے پر دیتے ہیں، آپ گاڑی کرایے پر دیتے ہیں، کبھی کسی نے کہا کہ یہ ناجائز ہے؟
نہیں،
کیوں، وجہ کیا ہے؟ यानी रुपया किराए पर नहीं दिया जा सकता, तो रुपये का किराया सूद है। अगर आप ये कहें कि क्यों, वजह क्या है उसकी, इसलिए ये तो समझाने के लिए लोगों को बताया गया है कि वो चीज़ें जिनमें कर्ज का मामला होता है, आप कहते हैं कि ये मकान मैंने कर्ज़ लिया है, जब आप किराए पर लेते हैं, ये गाड़ी मैंने कर्ज ली है, मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरी जगह पर जाएँ, आप लंदन गए हैं, वहाँ जा कर आप एक कार ले लेते हैं किसी आदमी से ताकि आपको 10 दिन गुजार सकें, क्या कहते हैं ये कार आपने कर्ज ली है या किराए पर ली है?
किराए पर ली है।
क्यों कहते हैं?
इसलिए कि हम जाहिर है
इसलिए आप जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, देखिए जब आप मकान बेच रहे हैं, जब आप गाड़ी बेच रहे हैं, जब आप साइकिल बेच रहे हैं, जब आप मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, जब आप मेज़ बेच रहे हैं, तो असल में आप एक चीज़ के बै और शरा का मामला कर रहे हैं। सूद का ताल्लुक इससे होता ही नहीं है। इसमें अगर कोई इस्तेमाल का मुआवजा लिया जाता है तो वो किराया हो जाता है उस चीज़ का। यानी चूँकि अभी मैंने आपको पूरे पैसे नहीं दिए हैं, मलकियत में आप भी अभी शरीक हैं, तो आप अपने हिस्से का किराया मुझसे ले सकते हैं। ये सादा बात है।
लेकिन ये आप जो फरमा रहे हैं कि किराया बिल्कुल है, लेकिन जब मैं किराए पे कोई चीज़ लेता हूँ, मैंने गाड़ी किराए पे ली, तो मालिक मकान, मैंने आपसे अगर गाड़ी ली तो उसका जो मिल्कियत है गाड़ी की वो आपकी है, तो अगर उस गाड़ी में कोई टूट फूट होती है, कोई मेंटेनेंस होती है, तो वो आपके ज़िम्मे है। जब मकान लेते हैं बैंक से और उसकी मिल्कियत बैंक के पास होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। ये इस तरह के मामलात फिर ज़रा
वही कोई अखलाकी उसूल नहीं है, ये तो आपके और मालिक मकान के दरमियान माहदा है। मैंने कई मरतबा बाज़ माहदात किए हैं मालिक मकान के साथ, जिसमें इस तरह की सारी जिम्मेदारी उसने मुझ पर डाल दी। ये कोई जायज़ नाजायज़ का सवाल नहीं है।
ये आपकी जो भी मामला है उस पर टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड
कंडीशन है, यानी आपने क्या जिम्मेदारी लेनी है, उन्होंने क्या जिम्मेदारी लेनी है, इसके लिए दीन ने कोई चीज़ तय नहीं की हुई। ये आपके माहदे आपकी शरायत से मुतल्लिक है, वो शरायत मुनसिफाना होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि आपने अभी उसकी रकम अदा करनी है और आपको ये सहूलत भी दे दी गई है। तो इस वजह से अगर इस माहदे में ये है कि अगर कोई टूट फूट होगी या इस तरह का मामला होगा, ज़िम्मेदारी आपकी होगी, कोई हर्ज की बात नहीं है इसके अंदर। ये असल में ख़रीदो फरोख्त का मामला हो रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ सिरे से कोई सूद का मामला हो ही नहीं रहा। सूद के मामले का ताल्लुक कर्ज से होता है, ख़रीदो फरोख्त से नहीं होता। ख़रीदो फरोख्त में आप ये एतराज़ कर सकते हैं कि माहदा मुनसिफाना है या नहीं है, तो आपने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि यहाँ तो एहसान हो रहा है दूसरे आदमी की तरफ से, इसलिए किसी तरह का भी एतराज़ इस पर वारद नहीं होता।
जावेद साहब, ये एक बीमारी जो है ब्लड की बीमारी है, थैलेसीमिया। अगर डॉक्टर बता दें कि आपके जो आने वाला जो बच्चा है उसको थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है, तो क्या ऐसी सूरत में अबॉर्शन का डिसीजन लिया जा सकता है?
इस कात हमल के बारे में या एबॉर्शन के बारे में मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ, और इससे पहले ये भी बता चुका हूँ कि मैंने इस पर एक तफसीली मज़मून भी लिख दिया है, मेरी किताब मकामात में है, उसको लोग पढ़ सकते हैं। इसमें हमारे फुकहा ने बिल्कुल ठीक इज्तिहाद किया है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ये बता दिया है और अल्लाह के पैगम्बर ने उसकी वजाहत फरमा दी है कि इंसान की तख्लीक इस तरह होती है कि पहले उसका हैवानी वजूद बनता है। इब्तिदा में भी ऐसा ही हुआ था जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और इस वक्त भी ऐसे ही होता है। यानी माँ के पेट में पहले इंसान का हैवानी वजूद तख्लीक होता है, 120 दिन के बाद उसको इंसानी शख्सियत दी जाती है। चुनाचे 120 दिन के अंदर अंदर अगर कोई जायज़ ज़रूरत पेश आ गई है तो एबॉर्शन हो सकती है, इसका जायज़ होगा, लेकिन किसी ज़रूरत के तहत 120 दिन के बाद वो इंसान है, ऐसे ही है कि जैसे वो पैदा हो गया है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा, ये एक सवाल है कि क्या माँ बच्चे को दूध 2 साल तक पिलाएगी, ये फ़र्ज़ है, लाजिम है, या 2 साल से पहले भी जो है वो दूध छुड़ाया जा सकता है?
ये माँ और बच्चे का मामला है, यानी बच्चे का हक है कि उसको दूध पिलाया जाए, माँ को दूध पिलाना चाहिए। ये जो कुरान मजीद में ज़िक्र हुआ है, ये दरअसल में तलाक़ के मौके के ऊपर जो मसाइल पेश आते हैं उनमें ज़िक्र हुआ है। यानी अब चूँकि वो खातून मुतल्लिका हो गई है, तो कोई मुआहदा किया जाएगा ना, ज़िम्मेदारी डाली जाएगी, तो उस मौके के ऊपर ये बताया गया है कि 2 साल तक अगर बाप चाहता है कि उसको दूध पिलाया जाए, तो खातून को चाहिए कि वो अपने आप को इसके लिए पेश करे। लेकिन उसमें भी ये बता दिया गया है कि अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता तो फिर किसी दूसरी खातून से मामला कर लिया जाएगा या कोई और दूसरा बंदोबस्त कर लिया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने इस मौके पर कहा है जबकि आपका मामला ख़त्म हो गया है, यानी आप अब उस तरह मियाँ बीवी नहीं रहे, और अब बहुत सी चीज़ें तय होनी हैं, बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाना है, उसकी किफ़ालत किसने करनी है, ये बातें तय होती हैं ना तलाक के मौके पर। तो ये उस ज़ैल में ज़ेर बहस आया है, कोई अमूमी कानून नहीं है कि बच्चे को हर हाल में माँ को 2 साल दूध पिलाना है, वो समझती है कि इससे ज़्यादा पिलाना है तो इससे ज़्यादा भी पिला सकते हैं।
दो साल का जो ये फिगर रखा गया, इसमें कोई हिकमत है दो साल ही के लिए?
यानी ये बता दिया गया है कि ये तो कम से कम बच्चे का हक ही है।
अच्छा,
इस वजह से इसमें माँ को भी आगे बढ़ के अपने आप को पेश करना चाहिए। बच्चा हो गया है, देखिए मियाँ बीवी के माबैन सूरत हाल वो नहीं रही जो इससे पहले थी। उन्होंने अलहदगी का फैसला कर लिया है। इस मौके पर बच्चे के हकूक़ क्या होंगे, हिजानत कैसे होगी, बच्चा किसके पास रहेगा, ये सारे मामला ज़ेर बहस आएंगे। तो बताना पड़ेगा ना कि 7 साल की उम्र तक मिसाल के तौर पर माँ के पास बच्चा रहेगा, जैसे हमारे फुकहा ने कानून साजी की। तो ये 7 साल इसी तरह दूध पिलाएगी 2 साल, ये असल में इस मौके का मामला है, क्योंकि अब चीज़ें ऐसे ही तय होनी है। वरना अगर मियाँ बीवी एक घर में हो, माँ बाप की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हों, तो वहाँ 7 साल माँ के पास रहेगा, कोई जिम्मेदारी पेश आती है?
ठीक,
एक सूरत हाल बन गई, तब्दील हो गई है। उसमें अब तय करना है, अदालत को तय करना है तो कितनी जिम्मेदारी माँ पर आयद होती है। तो फरमाया कि 2 साल की जिम्मेदारी तो उस पर आयद होती है, उसमें माँ को इनकार नहीं करना चाहिए। और उसमें भी मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने इसकी गुंजाइश दे दी है कि अगर बाहमी तौर पर कोई और मामला हो जाता है तो ठीक
है। अच्छा जावेद साहब, एक विरासत का सवाल आया है कि बेटे को जो है वो दुगना दिया जाता है बेटी के मुकाबले में, और इसका ताल्लुक मनफियत के उसूल पर है ये। लेकिन एक शख्स समझता है कि मनफियत के उसूल के मुताबिक मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा करीब है और उससे मुझे फ़ायदा ज़्यादा है, तो क्या ये जो मामला है रिवर्स कर सकता है, यानी बेटे को आधा और बेटी को दुगना दे सकता है? वो अगर समझता है कि मनफियत के लिहाज से बेटी करीब है।
देखिए, कोई आदमी अगर किसी के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, बेटे के बारे में, अपनी बीवी के बारे में ये समझता है कि उसको उसकी किसी खिदमत का, किसी मनफियत का सिला देना है
जी,
या वो ये ख्याल करता है कि उसकी कोई ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आपके सारे बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, एक बच्चा अभी तालीम पा रहा है, आपकी कोई बेटी मुतल्लिका हो गई, बेवा हो गई। हमारे जैसे माशरे में बाज़ औक़ात वो फिर वालदैनी पर मुनसर होकर रह जाती है। इस तरह की कोई भी सूरत, यानी कोई ज़रूरत, कोई खिदमत, किसी मनफत का सिला दे रहे बैस आ जाता है, तो अल्लाह ताला ने पहले आपको हक दिया कि आप वसीयत करें, और ये वसीयत बिल्कुल जायज़ है। यानी रिश्तेदारी की बुनियाद पर वसीयत नहीं हो सकती अपने किसी वारिस के बारे में, लेकिन ज़रूरत और मनफत और खिदमत की बुनियाद पर वसीयत हो सकती है।
तो इस वसीयत में ये मामला उलट हो सकता है?
नहीं, तो पहले करेंगे ना आप। अच्छा, बताएंगे क्या मिलना चाहिए उसको। आप कहते हैं कि हमारे माशरे में बीवियों के साथ आमतौर पर ये हादसा हो जाता है कि वो अगर 20-22 साल की उम्र में बेवा हो जाए तो शादी नहीं करती दूसरी, है ना, एक सोसाइटी का मिजाज बन गया हुआ है, तो इसलिए उनकी ज़रूरतों के लिए मुझे कोई वसीयत करनी है, कर सकते हैं। ये वसीयत आपकी है पहले, यानी ये फैसला हर आदमी अपने हालात के लिहाज से करेगा। आप जब अपनी वसीयत कर देंगे तो पहले वो अदा की जाएगी, इसके बाद अगर कुछ बच गया है तो वो फिर अल्लाह के कानून के मुताबिक तकसीम होगा रिश्तेदारी की बुनियाद पर। तो अल्लाह ताला ने जो फ़र्क किया है मनफत की बुनियाद पर, वो ये मनफतें नहीं हैं जिसका हम अंदाज़ा करते हैं, वो पोटेंशियल मनफत है।
इसको ज़रा वाज़े कीजिए।
पोटेंशियल मनफत का मतलब ये है कि देखिए, आपकी औलाद है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे ससुराल की तरफ मुंतकिल नहीं होते,
ठीक है,
जब उनकी शादी होती है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे घर में जाते
हैं,
यानी आप
इसी घर में
लाते हैं,
सही है,
ऐसा ही होता है,
ऐसा ही होता है, ठीक है,
और बच्ची को आप दूसरे घर में भेजते हैं,
ठीक है।
तो असल में जिस वक्त बच्ची को आप दूसरे घर में भेजते हैं तो उसकी मनफत अपने ससुराल की तरफ मुंतकिल हो जाती है, या अगर फर्ज कर लीजिए कि ससुराल उस तरह नहीं है तो शौहर की तरफ मुंतकिल हो जाती है,
ठीक है।
ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मनफत कमोबेश खत्म हो जाती है उसके बाद,
ठीक है,
या बहुत कम हो जाती है।
ये
हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, यानी ये हकीकत है कि आपकी अहलिया उस तरीके से अपने माँ बाप के हुकूक या जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर पाती जिस तरह के बेटा अदा कर सकता है। इसी तरीके से अगर किफ़ालत करनी है, अगर उनकी कोई ज़िम्मेदारी उठानी है, तो आमतौर पर ख्वातीन का मामला तो ये था ना, वो कमा नहीं रही होती थी,
सही है,
मर्द ही कमा रहे होते थे, तो वो ज़िम्मेदारी भी बच्चे ही उठाते थे,
ठीक है।
ये दोनों चीज़ें अगर सामने रख के आप देखें तो पोटेंशियल मनफत किसके यहाँ ज़्यादा है। रिश्तेदारी में अल्लाह ताला उस उसूल पर फैसला करता है। वक्ती तौर पर कोई सूरत हाल पेश आ गई है तो आप पहले वसीयत कर दीजिए। आप अगर कानून मीरास को सूरह निसा में पढ़ें तो उसमें हर हिस्से को बयान करने से पहले कहा है कि मिन बाद वसीयतिन तू सूना बेहा, यानी जो वसीयत तुम करोगे ये कानून उसके बाद है। तो आप अगर महसूस करते हैं कि किसी बच्ची का मामला ऐसा है कि उसने आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, या उसने आपकी खिदमत की है, सारे बच्चे छोड़कर चले गए थे, वो आपकी खिदमत करती रही, या उसकी कोई ज़रूरत, मैंने अर्ज़ की है, मुतल्लिका हो गई है, बेवा हो गई है, माजूर है, आप उसके लिए वसीयत कर सकते हैं। तो ये वसीयत है जो आप अपने हालात के लिहाज से करते हैं, इसका आपको हक हासिल है। इसके बाद जो बचेगा वो उस बुनियादी उसूल पर होगा कि कहाँ से मनफत बिल्कुआ पोटेंशियल मनफत कहाँ ज़्यादा पाई जाती है,
उसके बाद जो बचेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद अगर बचे ही ना, यानी मैं वसीयत अपने पूरे 100% माल में ही कर दूँ और मैं मनफियत को बिल्कुल उलट दूँ, तो ये पॉसिबल है?
ये देखिए, बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे कि जो काम इल्म व अखलाक की रूह से ठीक नहीं है, यानी आपने बेइंसाफ़ी कर दी, ये तो किसी हाल में भी नहीं करनी चाहिए।
लेकिन मैं अपनी दानिश में तो उसे बेइंसाफी नहीं समझ रहा।
बिल्कुल ठीक है, आप अगर मुतमईन हैं इस बात के ऊपर, आप समझते हैं कि आपके पास आपको वसीयत करने का, कर्ज अदा करने का हक है
जी,
तो इस वसीयत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई।
पूरे 100% माल में,
100% माल में भी कर सकते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक तिहाई माल के बारे में एक साहिब से कहा, वो उनके खास हालात में कहा है, यानी इससे किसी कानून को बयान करना मकसूद नहीं है। तो इस वजह से मैंने इस पर बड़ी वजाहत से अपनी किताब मीज़ान में बहस भी कर दी है और ये बता दिया है कि ये दोनों बातें समझने में हमारे यहाँ लोगों से गलती हुई है, यानी ये एक सुलस के मामले में भी रिवायत को समझने में गलती हुई है। रिवायत में ये चीज़ ज़ेर बहस नहीं है कि हर वसीयत एक सुलस तक होनी चाहिए, नहीं, एक ख़ास केस में, एक शख्स के मामले में जिसके हालात से आप वाकिफ़ हैं, आपने ये मशवरा दिया है और ये मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे तो सरे तस्लीम कम, लेकिन वो उन हालात में दिया गया मशवरा है। इस तरह की चीज़ों में ये देखा जाता है पहले कि बात किस मौके पर की गई, ये कोई उसूल नहीं बयान किया गया, एक शख्स का मामला दे रहे बहस। आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा माल है और मैं ये समझता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में वसीयत करूँ, और आप कहते हैं मेरा ख्याल है मैं सारा माल दे दूँ, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये ठीक नहीं।
ठीक है,
देखिए आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
ठीक है,
ये मेरी जो गुफ्तगू है इससे कानून नहीं अख्स किया जा सकता। इससे ये अलबत्ता मालूम होता है कि हमें एक अखलाकी उसूलों को सामने रखना चाहिए, इंसाफ से मामलात करने चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, ये तवज्जो दिलाई है आपने, तो इसलिए इस पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी गलती जो हुई है वो ये है कि ये उसूल कायम कर लिया गया कि वारिस के हक में वसीयत नहीं हो सकती, यकीनन नहीं हो सकती, लेकिन रिश्तेदारी की बुनियाद पर, बेटा होने की बुनियाद पर, बेटी होने की बुनियाद पर, बीवी होने की बुनियाद पर, बीवी, बेटी, बेटा, उनकी कोई ज़रूरत है, उन्होंने कोई खिदमत की है, आप उसके एवज़ में कोई वसीयत उनके लिए करना चाहते हैं, वो बिल्कुल जायज़ है। तो मैंने इसके दलाइल भी दे दिए और ये बता दिया है हमारे यहाँ मीरास के कानून में ये दो गलतियाँ हैं जिन्होंने कानून की सारी हिकमत बातिल करके रख दी है।
लेकिन जावेद साहब, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि यानी एक अल्लाह ताला ने इतना खोल कर विरासत के उसूल वो बता दिए कि इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, बड़े खोल कर बता दिए, उसके बावजूद मैं उस कानून को अलग रखे अपनी दानिश में समझता हूँ कि नहीं, मेरे नज़दीक ये वाला इंसाफ का फैसला है और उसके लिए भी मुझे इजाज़त दी गई है, तो फिर इतनी
उसी कुरान में दी गई है, यानी आप देखें हर मौके पर यह कहा है, मिन बाद वसीयत इन तूसूना बिहा उदैन, कर्ज पहले अदा करोगे और जो वसीयत तुमने की, और जो वसीयत तुमने की, और जो वसीयत तुमने की, बार बार कहा है। यानी ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला के कानून में कोई तरमीम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको ताकीद की है कि आप वसीयत करें। इसमें जो गलती हुई है वो दो रवायात को समझने में हुई है, यानी रवायात को समझने में हमारे यहाँ फुकहा गलती कैसे करते हैं, यानी गलती का क्या मंबा होता है, क्यों होती है गलती? एक चीज़ इतलाक़ की है, एक ख़ास सूरत हाल में कही गई है, एक ख़ास शरायत के साथ कही गई है, उसको जनरलाइज़ कर दिया जाता है बाद में, तो इस तरह की गलतियाँ इल्म में हो जाती हैं, उनकी इस्लाह करनी चाहिए। यानी हमें समझना चाहिए कि हमें जो कानून अल्लाह ताला ने दिया वो कैसा जामे कानून है, उसमें जिन चीज़ों का फ़ैसला हम कर सकते हैं उनका हक हमें दिया गया है, जिनका फ़ैसला हम नहीं कर सकते उनमें अल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया है। ये बात के बाप को कितना मिलना चाहिए, माँ को कितना मिलना चाहिए, बेटे को कितना मिलना चाहिए, रिश्तेदारी की बुनियाद पर इसका फैसला हम नहीं कर सकते थे, चुनाचे वो आप पढ़े उन आयात को, उनमें अल्लाह ताला ने तंबीह की है कि तुम नहीं जान सकते थे कि तुम में से कौन मनफत के लिहाज से ज़्यादा करीब तर है, इसका फैसला मैंने कर दिया है। लेकिन वो मनफतें जो तुमको नज़र आ रही हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो ज़रूरतें जो तुमको नज़र आ रही हैं, उसके लिए मैं तुम्हें हक दे रहा हूँ कि तुम पहले वसीयत कर लो।
ठीक,
पूरा कानून यही है, उस पूरे कानून को समझने में गलती हुई।
ठीक है, अब आपने ये फरमाया कि मैं अपने वारिसों के हक में वसीयत कर सकता हूँ, रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं, मनफियत के उसूल पर या किसी और ज़रूरत के तहत,
या ज़रूरत या खिदमत,
या ज़रूरत या खिदमत के तहत। लेकिन जब मैं वसीयत गैर वारिस के लिए करूँगा तो उसके लिए भी उसूल मनफियत ही का हो गया या क्या होगा? गैर वारिस
उसमें तो आपको पूरा हक है ना, आप जिस तरह चाहे वसीयत करें, यानी जब आप किसी दूसरे के लिए वसीयत कर रहे हैं तो आपको हक हासिल है, उसमें सिर्फ ये चीज़ मलहूज रखनी चाहिए कि बेइंसाफ़ी ना हो।
ठीक,
जिनका हक अल्लाह ने मुकर्रर किया है उनका हक बिल्कुल ख़त्म ना हो के रह जाए। असल में वही मौका है कि
और वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं,
वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। यानी आपकी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए किसी गैर मुस्लिम ने बड़ी खिदमत की है, और आप
तो वो भी खिदमत का ही उसूल हुआ ना, खिदमत या मनफियत ही
बायस ही होता है ना,
बायस यही होगा।
मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि आपको एक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक, दोस्ती का ताल्लुक हो गया किसी आदमी के साथ, आप उसकी बुनियाद पर वसीयत कर सकते हैं। आपने किसी मस्जिद के लिए वसीयत कर दी, आपने किसी इदारे के लिए वसीयत कर दी, तो आपको वसीयत का हक हासिल है। ये वसीयत का हक अगर आप गैर वारसों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस पर तो कोई पाबंदी है ही नहीं। वारसों के मामले में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वारसों के मामले में आपको ये हक नहीं है कि आप उनको वारिस बनाने का खुद फैसला करें, वो फैसला अल्लाह ताला ने कर दिया है। आप ये देखेंगे कि क्या इनसे कोई मनफत, कोई खिदमत ऐसी मुझे मिली है या कोई ज़रूरत तो ऐसी नहीं है जिसके लिहाज से मुझे ही फैसला करना है। ये फैसला करके आप उनके लिए पहले वसीयत करेंगे, वो रकम उनको पहले दे दी जाएगी, वो हिस्सा पहले उनको अदा कर दिया जाएगा, जो बचेगा उसमें फिर अल्लाह के कानून का इतलाक़ किया जाएगा। ये है असल में इस्लाम का कानून मीरास। अगर आप गौर करके देखें तो इसने हर सूरत हाल का अहाता कर लिया, नहायत जामे चीज़ है ये। सिर्फ दो रवायतों को गलत समझने के नतीजे में इसकी सारी हिकमत बातिल होकर रह गई। आप ख़ुद सोचें थोड़ी देर के लिए कि आपकी एक बच्ची ने फैसला किया या एक बच्चे ने फैसला किया, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं मुलाजमत की पेशकश भी ठुकरा दूंगा, मैं वालदैन की खिदमत करूंगा, बाकी चले गए।
सही है, ठीक है।
क्या आपकी अकल नहीं कहती? अब इसको कुछ मिलना चाहिए इसकी खिदमत के इवज़ में। अल्लाह ने आपको हक दिया है, आप उसको दें। अब ये उसकी खिदमत का इवज़ है, उसने जो इशार किया ये उसका मुआवजा है जो आप दे रहे हैं, या आप उसके लिए एक मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आपको इसका हक है। लेकिन रिश्तेदारी की बुनियाद पर वो और बाकी भाई या बहनें बराबर हैं, उनके लिए वही फैसला किया जाएगा जो अल्लाह ने कर दिया।
एक सवाल लेते हैं ऑडियंस से।
गामिस साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है?
देखिए, ये जो दोनों लफ्ज़ हैं, अगर तो लुगवी एतबार से देखें तो मोमिन का मतलब है वो जिसने ईमान कबूल कर लिया,
ठीक है।
और रिसालत मआब से पूछा गया ईमान क्या है, कुरान मजीद ने भी इसको बयान किया, हुजूर ने बहुत प्रिसीजन के साथ चंद लफ्ज़ों में समेट दिया कि ये पाँच चीज़ों को मानने का नाम है। तो ज़ाहिर है कि अगर इस लिहाज से देखें तो गोया जो आदमी अल्लाह ताला को मानता है, अल्लाह के फरिश्तों को मानता है, अल्लाह की किताबों को मानता है, अल्लाह के पैगंबरों को मानता है, आखिरत में उठकर हिसाब किताब के लिए पेश होने को मानता है, वो मोमिन है। पूछा गया इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया कि इस्लाम भी है कि तुम इस बात की शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज का अहतमाम करो, रोज़े का अहतमाम करो, हज करो, ज़कात दो। तो ये गोया ज़ाहिर है दीन का, आप इन कामों को अपनी ज़िंदगी के काम बनाएंगे,
ठीक।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। इस एतबार से गोया मुस्लिम वो है जो ये काम करता है, मोमिन वो है जो उन चीज़ों को मानता है। लेकिन फिर ये दोनों लफ्ज़ बिल्कुल मुतरादिफ़ इस्तेमाल हो जाते हैं, कुरान मजीद में भी हुए हैं,
ठीक है।
इसी तरह बज़ाहिर दीन को मान लेने के लिए भी लफ्ज़ इस्लाम इस्तेमाल हुआ है, दीन के नाम के तौर पर भी इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है,
ठीक है।
तो ये लफ्ज़ के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं जो कुरान मजीद में भी हुए हैं, हदीसों में भी हुए हैं, हम अपनी आम बोल चाल में भी करते हैं।
तो गोया ये अल्फाज दोनों मुतरादिफ भी हैं और इनमें फ़र्क भी है।
मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मुतरादिफ भी हैं और इनके माबैन बाज़ औक़ात इस्तेमाल के लिहाज से फ़र्क भी किया जाता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि आप जिन चीज़ों को मानने के पाबंद हैं उनके लिए मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है या ईमान का, और जिन चीज़ों को आप अपनी अमली ज़िंदगी में इख्तियार करते हैं, इस्लाम को या ईमान को ज़ाहिर होना है, आपके अमाल में ज़ाहिर होना है, तो वो जब ज़ाहिर होता है तो वो शहादत की सूरत में ज़ाहिर होता है। आप गवाही देते हैं कि आप अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह को तन्हा माबूद मानते हैं और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की रसालत के कायल हैं, आप नमाज का अहतमाम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, तो गोया आप अपने इस्लाम का इजहार कर रहे होते हैं।
सही।
तो इस तरह ये इस्तेमाल हो जाता है। और जब आप इस्लाम बतौर मज़हब, बतौर दीन ये लफ्ज़ बोलते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है उसमें ईमानियात भी शामिल होते हैं, उसमें ये चीज़ें भी शामिल होती हैं।
अच्छा जावेद साहब, जब किसी कानून का इतलाक किया जाएगा तो कानूनी तौर पर एक शख्स के इस्लाम, वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके पैगंबर पर यकीन रखता हूँ और दीगर जो ईमानियात है, तो उसकी जो कानूनी जो उसने इस्लाम कबूल किया उसी पर फैसला होगा ना, उसके ईमान को जांचने की कोशिश तो नहीं की जाएगी?
ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मुझको क्या हक है किसी के ईमान को मैं जाँचूँ? ये काम अल्लाह ताला का है, वो क़यामत में करेगा, वो किसके बारे में क्या फ़ैसला करता है, ज़ाहिर है कि वो दिलों के हाल जानता है। मुमकिन है कि एक आदमी बिल्कुल मुनाफिक हो, सोसाइटी के एहतराम में वो इलाहात का इजहार ना कर रहा हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों से जानता हूँ कि जो अल्लाह ताला पर भी ईमान नहीं रखते, लेकिन माशरती लिहाज से मुसलमानों के माशरे का हिस्सा है। अगर उनसे आप पूछें कि आपका मज़हब क्या है, مردم شماری کے موقع پر بھی پوچھیں تو کہہ دیں گے کہ اسلام ہے, لیکن حقیقت میں کوئی ایمان نہیں ہوتا, کوئی اسلام نہیں ہوتا.
تاہم ان پر قانون کا اطلاق تو وہی ہوگا.
میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ خدا کرے گا قیامت میں. آپ کو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. جب ایک شخص کہتا ہے کہ مسلمان ہوں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے اسلام کا انکار کریں. آپ کو تمام قانونی حقوق ماننے ہوں گے, اس لیے کہ اس کا کام ہے کہ وہ بتائے وہ کون ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں. یہ فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کرے گا, اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے, وہ کرنے کا حق رکھتا ہے, وہ خالق ہے. یہ حق مجھے نہیں دیا گیا, یہ آپ کو نہیں دیا گیا, یہ کسی حکومت کو بھی نہیں دیا گیا.
ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ ایسا کیوں ہے جاوید صاحب کہ ہر جو بیرونی سازش ہے یا غیر مسلموں کی سازش ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی ہے, اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فیس بک بھی ہے یہ یہودیوں کی ایجاد ہے, اس میں اس کے ذریعے سے وہ ہم مسلمانوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, ای میل کے جو سارے سرور رکھے ہوئے ہیں اس پہ وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے اور ان کے خلاف سازش کے لیے ہی تیار کی گئی ہے. یہ
جو قوم اخلاق کی لحاظ سے پست ہو جاتی ہیں, دنیا میں پچھڑ جاتی ہیں, پیچھے رہ جاتی ہیں, جنہوں نے جو دنیا میں علوم ہے ان کو حاصل کرنے میں کوتاہی برتی ہوتی ہے, وہ غفلت میں اپنے شب و روز بسر کر دیتی ہیں, وہ عام طور پر اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں. دیکھیے, دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یہ آپ کا باطن ہے جس کا ظہور ہوتا ہے. تو اگر کسی قوم نے علم کی دنیا کو اختیار کیا ہے, ہمیں جائزہ اپنا لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم سلیقے سے گفتگو نہیں کر سکتے, ہم اپنا موقف نہیں بیان کر سکتے جس طرح کہ ہمیں بیان کرنا چاہیے. علم کے معاملے میں ہمارا رویہ بالکل جاہلانہ ہو کر رہ گیا ہے. ہمارے ہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں. تو یہ کہ غیروں نے کی ہے یہ سازش, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یعنی آپ اپنی اخلاقی تربیت کریں, اپنے آپ کو علم سے وابستہ کریں. علم فیصلہ کرتا ہے اور اخلاق فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا میں کون سی قوم عروج تک پہنچے گی. اس کا فیصلہ دوسروں کے ہاں نہیں ہوا کرتا. جس وقت ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کو حق ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ معاملہ تبدیل کیسے ہوگا؟ یہ سازش کے افسانے بیان کرنے سے نہیں ہوگا, یہ اپنی اصلاح کرنے سے ہوگا. اور یہ اصول خود قرآن نے بیان کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین, میں نے دنیا کی قوموں میں سے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں فضیلت دی. ان کے خلاف دنیا کی بڑی طاقتوں نے اقدامات کیے. بابل کے حکمرانوں نے مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. قرآن مجید پورا پڑھ ڈالیے, حملہ کرنے والوں پر کوئی ایک لفظ بھی قرآن نہیں کہتا. ان کو کہتا ہے کہ تم نے در حقیقت خدا سے بے وفائی کی ہے.
صحیح بات ہے, ایسے
تم نے حدود کی خلاف ورزی
بار بار یا بنی اسرائیل کہہ کے انہی کو مخاطب کر رہا ہے.
تو جس وقت آپ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں, یعنی جو مسلحین ہیں, دانشور ہیں, لکھنے والے ہیں, ان کی ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ وہ اس قوم کی اخلاقی تربیت کریں, اور اس کو یہ بتائیں کہ اعلیٰ اخلاقی اصول کیا ہوتے ہیں, ان پر زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے, اختلافات کو کیسے گوارا کیا جاتا ہے, اپنی بات کیسے پیش کی جاتی ہے, اپنے مذہب کی تعلیم کیسے دی جاتی ہے. یہ تعلیم دیں, اس کے بعد یہ سازشیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی. اصل میں سازشیں خدا کے اذن سے پیدا ہوتی ہیں, اور خدا کا اذن کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں.
تاہم جاوید صاحب, اس بات کا امکان تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو یہ ڈیٹا ہے, مختلف الیکٹرانک ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ڈیٹا رکھا جا رہا ہے, کیونکہ سارے سرورز جو ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں, سارا کا سارا معلومات وہاں جمع ہو رہی ہے, اس بات کا امکان تو ہو سکتا ہے.
یہ بات یہ ہے کہ ان امکانات پر ہم بحث کیوں کریں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کر لیں اکٹھا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کو علم کی دنیا میں قدم رکھنا ہے, اس پر بھی غور کریں کہ یہ سب کچھ آپ کیوں ایجاد نہیں کر رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کے یہاں سے صادر کیوں نہیں ہو رہے, پچھلے 500 سال میں دنیا میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟
زیرو ہے.
تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ جہازوں میں آپ سوار ہونا بند کر دیں, ٹرین پر آپ چڑھنا بند کر دیں, بسوں کو استعمال کرنا بند کر دیں, جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بھی بند کر دیں. اس طرح کی باتیں مریض قومیں عام طور پر کرتی ہیں. یہ کوئی چیزیں نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان کی. آپ کو ساری توجہ اس پر دینی چاہیے کہ آپ کے اپنے اخلاق میں اس وقت کتنی پستی آ چکی ہوئی ہے. اس پستی کے ہم روز مناظر دیکھتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بلند کیجیے. یہ چیزیں غور کرنے کی بھی نہیں ہوتی. یعنی آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کوئی سازش ہو رہی, تو الٹ سکتے ہیں اس سازش کو.
ٹھیک,
वो साजिश करने वालों के खिलाफ साजिश हो जाएगी अगर आपने अपने आप को किसी बर्तर जगह पर खड़ा कर लिया है। अभी तो आपसे जो कुछ सादर होता है महज पस्ती होती, कुछ भी नहीं होता।
अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये बाज़ रिवायात में से ये हमें मिलता है या इशारतन मिलता है कि अल्लाह ताला ने जब अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने का जो है वो इरादा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी मुख्तलिफ़ मखलूकात को पहले ऑफ़र की, लेकिन हर मखलूक जो है वो पीछे हट गई। उसने कहा कि हम तो ये जिम्मेदारी लेने के अहल नहीं है, लेकिन इंसान ऐसा बेसब्रा था कि इंसान ने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। क्या ये रिवायत दुरुस्त है?
नहीं, ये बात तो कुरान मजीद में बयान हुई है, लेकिन इस तरह नहीं बयान हुई जैसे आपने इसका खुलासा किया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि खलीफा का मतलब अपना नायब नहीं है, खलीफा का मतलब है साहिब इख्तियार, साहिब इरादा, साहिब इक्तदार। यानी खलीफा का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में तीन मानी के लिए आता है, जानशीन के मानी में, नायब के मानी में और साहिब इक्तदार के मानी में।
तो
ये जो कुरान मजीद ने कहा है कि इन्नी जायलुन फिल अर्द खलीफा, उसका सही तर्जमा ये है कि मैं ज़मीन में एक बादशाह बनाने वाला हूँ, ज़मीन का इक्तदार एक मखलूक को देने वाला हूँ। इंसान को इस ज़मीन का, इस कुर्रा अर्ज़ का इख्तियार दिया गया है, उसके लिए लफ्ज़ खलीफा इस्तेमाल हुआ है। ये खुदा की नियाबत का कोई सवाल नहीं है। जिन लोगों ने इसका ये मफहूम बयान किया है उन्होंने अरबियत के लिहाज से गलती की है। मैंने इसको अपनी तफसीर में भी वाज़े किया है और बहुत सी गुफ्तगुओं में भी इसको वाज़े किया है कि इसका सही मफहूम ये है कि मैं ज़मीन में एक साहिब इक्तदार मखलूक बनाने वाला हूँ, यानी जिसको मैं इरादा दूंगा, जिसको मैं इख्तियार दूंगा, जिसको मैं ज़मीन की बादशाही दूंगा, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकेगी। उस मौके के ऊपर कुरान मजीद ने एक जगह ये भी बयान किया, गालिबन सूरह अहज़ाब के आखिर में है, कि ये जो इरादे और इख्तियार की एक अमानत है, बड़ी गैर मामूली चीज़ है ना। अल्लाह किसी मखलूक को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करने की एक दायरे में आज़ादी दे दे, इख्तियार दे दे। ज़मीन का इक्तदार आपके पास है, तहजीब को वजूद में लाओ, अजीम इमारतें बनाओ, दुनिया में अपनी मर्ज़ी के साथ हुकूमतें करो,
सही।
एक तवील अरसे तक यहाँ दुनिया में रहो और जो चाहते हो करो। आप देखें, इसका बहुत ही आला और बड़ा ही खूबसूरत बयान है जब ज़ुल्करनैन के वाक़े में कहा है कि फ़मनुन और अमसिक, यानी चाहो तो लोगों के ऊपर एहसान करो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, चाहे तो रोक रखो। ये किस चीज़ का बयान है? इस चीज़ का बयान नहीं कि दोनों बातें जायज़ हैं, यानी मतलब तुम्हें इख्तियार है, अब मैं पूछूंगा कि तुमने गलत किया है या सही किया है। तो ये इख्तियार है, जब दुनिया की दूसरी मखलूकात के सामने अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको पेश किया गया, तो वो इसका तहम्मुल करने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन इंसान अपनी फितरत के लिहाज से एक ऐसी मखलूक है कि ये ज़ुलूम भी है और जहूल भी है। ये अल्फाज अपने सही लुगवी मफहूम में इस्तेमाल हुए हैं, सही लुगवी मफहूम में। मतलब ये है कि ये जज्बात में आके अपने हदूद से बढ़ जाता है, ये बाज़ औक़ात जब किसी चीज़ को, किसी हदफ को अपने सामने देख लेता है तो अपने ऊपर जुल्म करने से भी बाज नहीं आता। आप किसी आशिक को देखिए, यानी वो पूरी पूरी रात जागता रहेगा, ये अपने ऊपर जुल्म है ना, लेकिन एक हदफ उसके सामने है। जो लोग तहकीक करते हैं, जो लोग चोटियाँ सर करते हैं, जो लोग जंगलों में निकल जाते हैं, ये लोग जो खला में जा रहे हैं, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, यानी एक आदमी जो है वो अपने आप को पेश कर देता है कि मैं चांद की सवारी में बैठने के लिए तैयार हो गया, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन पेश कर देता है अपने आप, उसे मालूम है। तो ये जो चीज़ इंसान के अंदर है, यही असल में इरादे और इख्तियार की इस अजीम अमानत को पाने का ज़रिया बन गई है। तो ये कुरान मजीद ने इंसान की फितरत का एनालिसिस किया है कि इंसान को अल्लाह ने फितरत ऐसी दी है कि कोई बड़ा हदफ सामने रखिए, वो पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ बढ़ेगा, हाँ उसके लिए अपनी जान पर जुर्म कर बैठे।
जावेद साहब, ये एक क्वेश्चन है कि सूअर का गोश्त तो हराम है, वो नहीं खाया जा सकता, लेकिन क्या सूअर की फार्मिंग की जा सकती है और फार्मिंग करके सूअर को एक्सपोर्ट किया जा सकता है?
देखिए, बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को ममनू करार दिया है हमारे लिए, तो फिर उसको कारोबार का ज़रिया भी नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल एक अकली बात है। यानी एक चीज़ को आप समझते हैं कि ये लोगों को नहीं खानी चाहिए, अल्लाह का कानून लोग मानते नहीं है, तो पूरी इंसानियत के लिए
ठीक है।
देखिए, मैं यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हमें दीन को भी दोनों पहलुओं से पेश करना चाहिए। यानी एक चीज़ ये है कि मुसलमानों को अल्लाह ने क्या अहकाम दिए हैं, दूसरी जानिब ये कि वो अहकाम किसी मसलियत को सामने रख कर दिए गए हैं, उसको दूसरे इंसानों को भी बताना चाहिए। तो हमारे लिए ये दरिंदे क्यों ममनू करार दिए गए? इसलिए कि इंसान की शख्सियत पर उसके खुरनोश के असरात होते हैं,
ठीक है।
तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारी इंसानियत नशोनुमा पाए, हमारे अंदर भी एक हैवान मौजूद है, वो बहीमियत जिसको शाह वलीउल्लाह बयान करते हैं, वो बहीमियत कम हो, यानी जो एक जानवर का درندے کا طریقہ وہ کم ہو, اسی لیے خون ممنوع قرار دیا گیا, سور کو بھی اسی لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ دنیا میں واحد جانور ہے جو اسپیشیز کے لحاظ سے, اپنی نو کے لحاظ سے یہ بکری کی اسپیشیز سے ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن یہ کچھلیاں رکھتا ہے اور یہ گوشت کھاتا ہے, تو اس وجہ سے اس میں درندگی اور جو جانور کھانے کے ہیں وہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں. تو یہ ایک مشتبہ جانور تھا, اس میں ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ درندگی کے پہلو سے ممنوع قرار دیا جائے یا چونکہ اس کی نو بکری کی ہے تو اس کو حلال قرار دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ حرام ہے, تو یہاں بھی دیکھیے وہی چیز,
وہ تو حرام ہے لیکن
وہی چیز, اس کو اب ظاہر ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ممنوع قرار دی ہیں تو ان چیزوں کو آپ بیچنے تو نہیں نکل کھڑے ہوں گے نا, یہ بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے. تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ یہود نے بڑی غلطی کی اس معاملے میں کہ اللہ نے یہ چیز ان پر حرام قرار دی اور انہوں نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا. تو اس کے نتیجے میں اس چیز کی شناخت جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر جو چیز ممنوع ہے ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے.
لیکن جاوید صاحب پھر اس طرح سے جو آپ نے جو اصول بتایا, اس طرح سے تو جو درندے جو درندے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کا گوشت بھی ممنوع ہے, تو اس کا مطلب میں نہ تو شیر کا شیر کو ایکسپورٹ کر سکتا ہوں, نہ چیتا ایکسپورٹ کر سکتا ہوں, نہ میں اونٹ ہاتھی کو ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. یعنی ان جانوروں کو بھی جو ہے ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا,
وہ کھانے کے لیے نہیں ہے نا, ان میں دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یعنی
بعض ممالک میں یہ سارے یہ بھی کھائے جاتے ہیں, کتے بھی کھائے جاتے ہیں.
یہ بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ لوگوں کو کہا جاتا ہے, لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے منگوا رہے ہیں, تو وہی اصول ہوگا
آپ کو نہیں بیچ سکتے,
آپ کو بتانا چاہیے ان کو. بیچنا تو ایک طرف رہا, آپ کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ تو موقع آپ کے خدا کا پیغام پہنچانے, خدا کی دعوت پہنچانے کا موقع ہے. اسلام اس اصول پر نہیں کھڑا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سگریٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے,
جی,
تو آپ یہ اصول قائم کریں گے کہ سگریٹ میں تو نہیں پیوں گا لیکن میں لوگوں کو پلاؤں گا, کاروبار کروں گا اس کا؟
یعنی جاوید صاحب یہ جو یعنی ڈاگز کا تو کاروبار کیا جاتا ہے, یعنی اس کا مطلب آپ کی جو بات سے میں سمجھاؤں وہ یہ کہ ڈاگز کو چائنا میں نہیں بھیج سکتا,
ساری دنیا نہیں,
میں امریکہ میں تو اسے ایکسپورٹ کر سکتا ہوں, چائنا کو نہیں.
یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ وہاں ہر آدمی کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے کسی چیز کو بیچ رہے ہیں, یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کس مقصد کے لیے بیچ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کتوں کی تو بہت سی ایسی اقسام ہیں جن سے آپ بہت مفید کام لیتے ہیں,
بالکل صحیح ہے,
ان کو آپ سدھاتے ہیں, ان کو آپ گھر میں رکھتے ہیں, ان کے ذریعے سے جرائم کی تحقیق ہو رہی ہے, آپ بیچیے, اس میں کوئی معنی نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے ان کتوں کی کہ جن کی آپ تکلیف کرتے ہیں, جن کو آپ سکھاتے ہیں, آپ سدھاتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے فلاں مقصد کے لیے ممنوع قرار دیا ہے, آپ کو معلوم ہے, ایک یہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ نے تو عام طریقے کے مطابق تجارت کی, دوسرے نے اس کو غلط استعمال کر لیا, اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر سور کا کوئی استعمال کھانے کے علاوہ ہو رہا ہے اور آپ اس مقصد کے لیے پالتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
یعنی اس مقصد کے لیے میں سور کی فارمنگ کر سکتا ہوں,
ہر چیز کی کر سکتے ہیں, جیسے شیر کی کر سکتے ہیں, جیسے آپ کتوں کی کر سکتے ہیں, جیسے دوسری چیزوں کی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے یہ آدمی اس مقصد کے لیے مجھ سے یہ چیز طلب کر رہا ہے, تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو بھی یہ بتائیں کہ یہ چیز ممنوع ہے اور کیوں ممنوع ہے, اس کی حکمت بتائیں اس کو.
سگریٹ پینا ظاہر ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, تو جب میں سگریٹ پیتا ہوں تو گویا میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں, تو یہ کیا جائز ہوگا؟ کیونکہ بعض علماء کے نزدیک حرام ہے سگریٹ پینا.
دوسروں کو بھی اب ہلاکت میں ڈالتے ہیں,
دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں.
یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اگر کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے قریب کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے, تو یہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. دیکھیے کوئی چیز نقصان دہ ہے اس کا فیصلہ انسانی عقل کرتی ہے, آپ کو نقصان دہ چیز سے خود کو بچانا چاہیے. ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو گئی, یہ ان کا موضوع ہے,
ٹھیک ہے.
اچھا, جس وقت یہ بات طے ہو گئی کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے, تو اب یہ مذہب کا موضوع ہو گیا. یعنی اگر یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی چیز دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن سکتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں, کیونکہ دین میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ آپ کو نہ کسی کی حق تلفی کرنی ہے اور نہ کسی کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس پہلو سے تو اس سے دینی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی روکا جائے گا, لیکن اگر یہ محض نقصان دہ ایک چیز ہے تو پھر یہ طب کا موضوع ہے, یہ دین کا موضوع نہیں ہے. دین کا موضوع کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جب وہ اخلاقی لحاظ سے غلط ہو جاتی ہے.
دین کا موضوع کیوں نہیں ہے جاوید صاحب؟ میں اپنے اعضا کو کاٹ تو نہیں سکتا، میں اپنے اعضا کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، یہ تو اس سے تو مجھے دین بھی روک رہا ہے، تو میں سگریٹ کیوں پی سکتا؟
وہ اخلاقی جگہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آپ کے پاس، اللہ کا دیا ہوا جسم، آپ کو اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ ایک اخلاقی پہلو ہے، ایک اخلاقی پہلو ہے،
ٹھیک ہے؟
تو جب اخلاقی پہلو سے آپ کسی چیز کو دیکھیں گے تو وہ دین کے اور اخلاق کے نقطۂ نظر سے بھی کہا جائے گا کہ ممنوع ہے۔ جب ایک چیز کا تعلق محض ایک ایسے نقصان سے ہے کہ جو نقصان زیر بحث ہے، پہنچ بھی جاتا ہے نہیں بھی پہنچ جاتا، کوئی حتمی چیز بھی نہیں ہے، آپ کو کتنا نقصان پہنچتا ہے کتنا نقصان نہیں پہنچتا، تو اس طرح کی بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ایک طبیب کو کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی پہلے فیصلہ کون کرے گا؟ پہلے ایک طبیب فیصلہ کر کے بتائے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب وہ نقصان دہ کس درجے میں ہے؟ وہ اس درجے میں نقصان دہ ہے کہ جس درجے میں جا کے گویا آپ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پہ چلے گئے۔
جاوید صاحب، کوئی بھی طبیب یہ نہیں کہے گا کہ سگریٹ پینا نقصان دہ نہیں ہے، یہ کوئی طبیب نہیں کہے گا۔
نہیں دیکھیے، سگریٹ کے بارے میں، حقے کے بارے میں بہت بحثیں ہوتی رہیں، ایک زمانہ رہا، اب آ کے بہت سی چیزیں واشگاف ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے دنیا بھر میں اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ دیکھیے میں جو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نقصان کب جا کے اخلاقی مسئلہ بنتا ہے؟ جب وہ اخلاقی مسئلہ بنتا ہے تو مذہب کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے، جب تک وہ طبی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک طبیب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے آپ اگر زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے، یہ طبی کا موضوع ہے۔ آپ کو ایک اصولی اخلاقی تعلیم دی جائے گی کہ آپ اپنے نفس کا حق محسوس کریں اور اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کا تعین کرنا کہ کون سی چیز کتنے نقصان دہ ہے کتنی نہیں ہے، یہ طبیب کا موضوع ہے، یہ مذہب کا موضوع نہیں، مذہب اخلاق کو زیر بحث لائے گا، یہ بنیادی اصول سمجھ لینا چاہیے۔ مذہب آپ کو طبی نسخے بتانے کے لیے نہیں آیا،
مذہب اخلاق کو زیر بحث لائے گا۔ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ اس نے کسی کی
خدا سے بغاوت کی ہے، اس نے خودکشی کیا ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ میرے بارے میں کیا تھا کہ مجھے اس نے ایک وقت میں دنیا میں لے جانا ہے، یہ امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا،
ٹھیک ہے،
میں اس سے بغاوت کر رہا ہوں، تو یہاں تو اصل میں بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہو گیا، یہ خدا سے بغاوت ہو گئی۔ لیکن جو عام زندگی کے اندر بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں یہ نقصان دہ ہیں، بھائی آپ جاتے ہیں ایک طبیب کے پاس، وہ کہتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اس کو مذہب کا مسئلہ کیسے بنا دیا جائے؟
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت سارے اور بھی سوالات ہیں، اور یقیناً یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہوئی ہے اس سے بھی کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے۔ یہ جو ای میل ایڈریس آپ کے سامنے اسکرال کر رہا ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات سے آگاہ کر سکتے ہیں، آپ کے ان سوالات کو اگلے کسی پروگرام میں ہم ٹیک اپ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔